بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما للإمام المنتظر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
یہ آواز ٹھیک ہے کیا؟
1443 ہجرہ کے ایام عزا کے پہلے عشرے کی آج یہ آخری مجلس ہے. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مون سائٹنگ کے اعتبار سے 11th آف محرم کا دن ختم ہوا ہے اور ایو ہے 12th محرم کی، یعنی شب 12 محرم 1443 ہجری. اور یہ مجلس عشرے کی آخری مجلس ہونے کے ساتھ ساتھ امام مظلوم کے سوئم کی، یا جو بعض علاقوں میں ٹرم استعمال ہوتی ہے، زیارت کی مجلس ہے. امام زمانہ اور ولایت علی کے ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب میرا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال میلبرن کے ایک ممبر سے مجھے ایک مشورہ دیا گیا تھا، مجھے اس پہ عمل کر لینا چاہیے کہ بھائی بہت ہو گیا، اب آپ بہت ضعیف اور بوڑھے ہو گئے ہیں، اور میسج انڈر دا لائن یا ہڈن میسج کے سٹھیا بھی گئے، ریٹائرمنٹ لے لیجئے، نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دیجئے. اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعا میری عمر، میرا بڑھاپا اور میری صحت وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جسے ایک عام زبان میں ریٹائرمنٹ کہا جائے وہ اختیار کر لینا چاہیے، ورنہ عبادت اور عزاداری تو ایسی چیز ہے کہ جس سے کبھی کوئی آدمی ریٹائر ہو ہی نہیں سکتا، جنت کے دروازے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو معذرت کہ تقریر عشرے کے درمیان سے کچھ ذرا سی، شروع میں 3-4 مجالس تو ٹھیک رہی، اس کے بعد تھوڑا سا موضوع ڈسٹرب سا ہو گیا، اتنا میں آرگنائز طریقے سے بات کو آگے بڑھا نہ سکا. چونکہ الاثر اسلامک سینٹر میلبرن، جہاں سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور جیسا کہ لاسٹ ایئر میں نے کہا تھا، وہ ایک جملہ یہاں دہرا رہا ہوں پھر، کہ ان مجالس کے بعد اب جو دوسری میری مجالس ہیں اس کے بعد کی، وہ بھی الاثر اسلامک سینٹر میں. البتہ یہ دنیا کا ایسٹ ہے، وہ دنیا کا ویسٹ ہے، یہ آسٹریلیا کا میلبرن ہے، وہ یو ایس اے کا کیلیفورنیا ہے، لیکن چونکہ یہ نام بہت پاپولر ہے، میری اگلی مجالس بھی وہاں ہونے والی ہیں، تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ الاثر اسلامک سینٹر میلبرن کی بات ہو رہی. میلبرن میں لاک ڈاؤن بھی ہے اور میلبرن میں کرفیو بھی عشرے کے درمیان شروع ہو گیا، لیکن میری اپنی کوشش بھی پچھلے سال یہی رہی اور اس سال بھی، اور انتظامیہ اور الاثر اسلامک سینٹر کے منتظم زکی پنجو صاحب کی کوشش بھی یہ رہی کہ گورنمنٹ کے قوانین کی روشنی میں، چونکہ امام باڑے اور مسجدیں کھولنے کی اجازت ہے، صرف مجمع کی تعداد پہ پابندی ہے، تو حتی الامکان ہم لوگ کرفیو کے درمیان بھی، جب اجازت ہے، کوئی نہ ہم شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ کے قانون کی، تو तो यह अदा खाना खुलेगा और यहां पे बाकायदा खाली मेरा बयान ही लाइव नहीं होगा, उससे पहले सोजो सलाम भी घर में बैठकर करने के बजाय यहां इमाम की बारगाह में होगा और बात का नोहा और मातम भी अदा खाने के अंदर होगा। अब यहां मजबूरी है, मैं मजबूरी वाले इलाकों के ऊपर किसी किस्म का एतराज नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि चूंकि ये एक पाबंदी थी, हम लोगों ने अपने आप पे ये पाबंदी लगाई, इसे एक हक इमाम समझा, अदा खाने का एक हक समझा, जिसकी वजह से मुझे आना भी बहुत दूर से पड़ता है, मैं बिल्कुल करीब भी नहीं हूं। कुछ मजालिस डिस्टर्ब हो गई कि भाई कर्फ्यू लग गया है, कर्फ्यू के टाइमिंग शुरू हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अल असर इस्लामिक सेंटर मेलबर्न का ये अशरा आजादारी के तमाम तकाजों को पूरा करते हुए बहुत ही हुस्नो खूबी के साथ इख्तिताम को पहुंच रहा। तमाम शबीहें भी अपने वक्त पे बरामद हुई और इसी हॉल के अंदर लाइव आजादारी भी हुई और इंशाल्लाह अगले साल इससे बेहतर माहौल होगा और ये दुनिया जिस बीमारी और परेशानी की वजह से इस वक्त अपने दीनी और दुनियावी कामों को महदूद करने पे मजबूर है, ये मसला खत्म हो जाएगा। अलबत्ता ये इत्मीनान तो है कि अपनी हद तक इन हालात में हमने हक अदा कर दिया, लेकिन इंसाफ और की बात तो ये कि अल्लाह की इबादत भी वो अमल है जिसका हक तो कभी अदा हो ही नहीं सकता। मा अबदना का हक का इबादत, जब कायनात का सबसे बड़ा इबादत गुजार अली इब्ने अबी तालिब ये कह दे कि आए खुदा जो तेरी इबादत का हक है वो मैंने अदा नहीं किया, तो हम जैसे गुनाहगार किस हैसियत से ऐसे दावे करें। और इसी तरह अजा इमाम का हक भी कभी अदा नहीं हो सकता, लेकिन जो रिसोर्सेस थे, जो हमारे लिमिटेशन थी, उसके दरमियान रहते हुए गालिबन मेलबर्न के एतबार से बेहतरीन तरीके से ये आजादारी हुई। और बात जो मैं कहने जा रहा था, सिर्फ कुछ हालात का प्रेशर था कि मेरा मौजू थोड़ा सा ट्रैक से भी हटा, डिस्टर्ब भी हुआ, ऑर्गेनाइज तरीके से बात नहीं हो सकी। और जैसा कि मैंने कहा कि शायद इसमें हालात के साथ साथ मेरे बुढ़ापे का भी दखल हो, तो बेहतर यही है कि अब मैं ये जिम्मेदारी छोड़ के आप हजरात की तरह से सफे अजा पर बैठकर एक सामे यानी मजलिस सुनने वाले का सवाब हासिल करूं। हां, एक बात इसी हवाले से मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक और वजह भी मेरे जहन में है और यहीं से आज मैं बात शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आजादारी के हवाले से बात हो रही है ना, कि पहला अशरा मुकम्मल हो रहा है, आज आखिरी मजलिस है, हक अजा जो पहले अशरे में जितनी हमारी ताकत और कैपेसिटी है उसके इतिबार से अदा किया गया। मुझे खुशी इस बात की हुई कि तिलावत से लेकर, सूजखानी से लेकर, सलाम से लेकर, नोहे से लेकर, सीनों पे हाथ मार के मातम करने से लेकर झूले और गहवारे और आलम और ताबूत की जियारत तक, और मेरी तकरीर तो बीच में है, ये सारी चीजें हमने लाइव अदा खाने के अंदर, जो हुसैन का घर है, जो फातिमा जहरा का घर है, इसमें अंजाम दी। लेकिन एक मसला और भी आता, हमारे उलमा अक्सर एक जुमला कहते हैं जो मजालिस में आपने बहुत सुना होगा, मैं भी कई दफा इस पर पूरे पूरे घंटे की मजलिस पढ़ चुका हूं। शहजादी कौनैन को अल्लाह ने कोई उहदा नहीं दिया, मनसब नहीं दिया, यानी वो ना रसूल है ना इमाम, जबकि रिसालत की जितनी भी क्वालिटीज है वो सब फातिमा जहरा में बाकी रसूलों से ज्यादा सिवाय रसूल खुदा के मौजूद है, और इमामत की जितनी कंडीशंस है वो सब शहजादी कौनैन में मौजूद है और शायद बाकी इमामों से ज्यादा, तो बाकी जितने इमाम है मौला के अलावा वो सब के सब उनकी औलाद हैं। उसके बावजूद वो खुदा नहीं दिया गया। एक सवाल ये पैदा होता है कि वाय, आम जवाब ये दिया जाता है कि औरतों को ओहदे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह, ऐसी कोई इस्लाम का तयशुदा उसूल नहीं। अब चूंकि आज का मौजू कुछ और है, मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं, वरना जो मैंने कहा कि सिर्फ एक नुक्ते को जो मैं 5 मिनट में समझाना चाह रहा हूं 1 घंटा लगाता हूं मैं भी और उलमा भी। तो कहते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जब कभी कोई डिस्प्यूट होता है या कोई कंट्रोवर्सी होती है या कोई इख्तलाफ होता है तो फिर उसको बीच में लाया जाता है जो एक तरह से न्यूट्रल सा हो। बहुत लंबी बात है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं तो शायद पूरी तरह आपकी समझ में बात ना आए। क्योंकि शहजादी कौनैन को रिसालत का गवाह भी बनना और शहजादी कौनैन को इमामत का गवाह भी बनना, मजलिसों में आपने बार बार सुना है, मैं कोई नया इंकिशाफ नहीं कर रहा हूं। मुबाहले के मैदान में रसूल हैं और यानी इस्लाम है और कुफर है, और दरमियान में फैसला करना है शहजादी को आके ये फैसला करना वो गवाह बनने वाली है, तो कोई ओहदा नहीं दिया गया ताकि वो न्यूट्रल उनकी पोजीशन रहे। और इमामत के मसले पे जो पहला इख्तलाफ मुसलमानों में हुआ वहां पर भी शहजादी को खुतबाए फदक के जरिए से आके फैसला करना है कि हक कहाँ है बातिल कहाँ, तो एक न्यूट्रल पोजिशन अता की गई। बहुत जल्दी जल्दी मैंने बात की, अब वो शहजादी कौन है तो रुतबा ऐसा कि आइम्मा भी उस रुतबे को देखते हैं तो यही ख्याल करते हैं कि वहां तक शायद हम ना पहुंच पाए, तो मैं क्या हैसियत रखता हूं, लेकिन सीरत को फॉलो तो करना है ना। तो मैंने भी ये महसूस किया कि बहुत सारी अहम बातें और बहुत सारे अहम मैसेजेस या तो मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं मेलबर्न के अंदर, और या पहुंचाता भी हूं तो वो जाय हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो पोजीशन न्यूट्रल की नहीं रही। कोई बात नहीं किया जाता, यहाँ का कुछ ऐसा माहौल बन गया कि ये इस इदारे वाला है, वो उस इदारे वाला है, ये इस इमामबाड़े वाला है, वो इस इमामबाड़े वाला है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन वाला है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन वाला। और बाज़ इदारों में वो जज्बा आ गया है जो कुरान करीम सूरह मुनाफिकून में मुनाफिकों की पहचान बता रहा, और ये वो सूरह है जो आमाल आशूरा की चौथी रकत की नमाज में पढ़ा जाता। अमल आशूरा में एक ऐसा अमल है जो अपनी जगह बहुत अहम, लेकिन टाइम कम होने के बिना पर अक्सर लोग उसको छोड़ देते हैं, और वो है 4 रकत नमाज दो दो करके, और तीसरी रकत में सूरह अहजाब है, चौथी रकत में सूरह मुनाफिकून। अच्छा, मैंने इसको एक बहुत अहम अमल क्यों कहा? एक तो वैसे ही इस नमाज की अपनी अहमियत है, लेकिन आमाल आशूरा अंजाम देने वाले किसी आदमी से पूछिएगा कि अमल आशूर में कोई अमल तुम्हें याद है, ज़ियारत आशूरा ये लफ्ज है, लेकिन कहिए कि ज़ियारत सुना दो, नहीं याद नहीं होगी। सिर्फ एक अमल ऐसा है जो बच्चे बच्चे को मालूम है कि 7 मरतबा हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए आगे बढ़ते हैं और पीछे हटते हैं, हर एक को मालूम है ये अमल। ये अमल अलग से नहीं है, ये 4 रकत नमाज के बाद का अमल है। जो रिवायत हमारे पास आई है वो यही तो आई है ना कि पहले 4 रकत नमाज पढ़ो, जैसे ही नमाज खत्म हो अपनी जगह से खड़े होके 7 मरतबा आगे बढ़ो, ये उसका एक पार्ट है। ठीक है, अगर आप इसको अलग अलग कर दें तो ये गलत नहीं होगा। जैसे हम लोग मौला हुसैन की ज्यारतें पढ़ते और है कि इसके बाद 2 रकत नमाज ज्यारत पढ़ो, लेकिन ये 2 अलग अमल है। आप खाली अगर जियारत पढ़े नमाज ना पढ़े तो जियारत वेस्ट नहीं होगी, खाली आप नमाज पढ़ ले आका हुसैन को हदिया करता हूं जियारत ना पढ़े तो नमाज वेस्ट नहीं होगी, लेकिन एक्चुअल अमल है दोनों को मिला दो। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाला अमल आया ही इस तरह से है कि पहले नमाज पढ़ो, नमाज जैसे ही खत्म हो तुम्हें ये अमल करना, ये उसका पार्ट है। अच्छा, वो इन्ना लिल्लाह वाला अमल बहुत ही शॉर्ट भी है, बहुत ही सिंपल भी है और बहुत अहम भी है, इसलिए वो हर एक को याद है। लेकिन ये 4 रकत नमाज जरा भारी लगती, क्योंकि लंबे लंबे सूरे नहीं पढ़े जाते तो अक्सर जगह टाइम को बचाने के लिए वो नमाज छोड़ दी जाती। और यहां पे मैं इसीलिए एक अपनी बात को बिल्कुल ऑथेंटिक बनाने के लिए एक बात कह दूं, हमारे बच्चे बच्चे को मालूम है कि आमाले आशूरा में 7 मरतबा आगे जाके इन्ना लिल्ला वाला अमल करना सबसे ज्यादा मशहूर अमल, मफातीहुल जिना में शेख अब्बास कुम्मी ने दुनिया भर के अमल लिख दिए, ये वाला अमल नहीं। मफाती जो हमारे यहाँ एक क्लासिकल बुक बन गई है अमल की, पूरे साल में जब कभी आपको कोई अमल करना हो पहली दौड़ हमारी मफातीहुल जिनान की तरफ होती, इसमें क्या लिखा, मासूमीन के हरम में कहीं भी हम जाएं, कोई भी जियारत पढ़ना हो या जियारत का तरीका देखना हो, पहली दौड़ हमारी मफातिहुल जिनान की तरफ होती है। और ये इतनी एक ऑथेंटिक सी किताब बन गई है कि पर्शियन में लिखी थी शेख अब्बास कुम्मी ने, लेकिन इतनी अहम किताब बन गई है कि अरब दुनिया की डिमांड पर इसका अरबी ट्रांसलेशन करके हर हरम में रखा गया। पर आमतौर पर यह होता है कि अरबी किताबों का तर्जुमा तो दूसरी जबानों में होता, दूसरी जबान की किताबें अरबी में नहीं जाती। ये मफाती आपको मिले इसलिए कि वाकई पूरी शिया दुनिया के अंदर इसकी इतनी कन्फर्म किस्म की हैसियत। लेकिन इसमें क्यों नहीं है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का अमल है ही नहीं, जिस अमल के बगैर हम बाकी पूरे अमाले आशूरा को इनकम्प्लीट समझते हैं, वही अमल नहीं है मफाती के अंदर। और उसकी वजह यही कि शेख अब्बास कुम्मी ने सिर्फ एक जुमला लिखा कि आज आशूरे के लिए चार रकत नमाज भी रिवायत में आई है, लेकिन चूंकि उसका लंबा तरीका है तो मैं उसको यहां बयान नहीं कर रहा हूं, इब्ने ताऊस की किताबें अखबार में देखी। और ये इन्ना लिल्लाह चूंकि उसी नमाज का पार्ट है तो वो पूरा अमल उन्होंने जब छोड़ा ना चार रकत नमाज वाला, तो इन्ना लिल्लाह भी उसके साथ है, अलग से नहीं है। अलग से करें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि चार रकत नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसके इख्तिताम पे इन्ना लिल्लाह उसका हिस्सा बनाया गया, तो उसकी चौथी रकत में सूरह मुनाफिकून। और सूरह मुनाफिकून में कुरान बता रहा कि मुनाफिकों की एक पहचान ये कि वो दीन के टुकड़े कर देते हैं, ये अपना है ये गैर। यही तो हुआ था ना कि मदीने वाले का किसी मुहाजिर से झगड़ा हो गया तो मदीने के सारे मुनाफिक अपने आदमी के फेवर में आ गए, का ये हमारा है, ये नहीं देख रहे हैं कि हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये हमारा है। और वो जिससे झगड़ा हुआ है वो हमारा नहीं है, बाहर के शहर से आया है, हम मदीने जाते ही उसको मदीने से निकाल फेंकेंगे। बहुत मशहूर वाकया है लेकिन लंबा वाकया है, मैंने मुख्तसर कर दी। तो ये वाली मेंटेलिटी कि जहां फैसला हक और बातिल पे नहीं होता, अपने और गैर पर होता, वहां पर यह बड़ा मसला हो जाता है कि अगर हम कोई बात कहें तो वो न्यूट्रल पोजीशन नहीं रहती है जब आप किसी एक इदारे से मुंसलिक हो जाते हैं। हक और बातिल का पर फैसला होना चाहिए। कुरान करीम सूरह तौबा में एक अजीब तो नहीं एक उसूल बता रहा क्या चीजें इंसान को हक पर चलने से रोकती। इसके बाद एक जुमला और कहूंगा। करबला क्या है? हक और बातिल का कयामत तक के लिए फैसला। जरा मैं फास्ट हूं इसलिए कि आज आखिरी मजलिस है, बातें बहुत सारी। कयामत तक के लिए हक और बातिल का फैसला करबला। हक और बातिल का जो फैसला हो ना, इसको अरबी में कहते हैं फुरकान, फर्क करने वाला। तो कुरान करीम भी हक और बातिल को अलग करता है, कुरान का नाम भी फुरकान और करबला का नाम भी फुरकान, हक और बातिल को अलग। अब सूरह तौबा की एक आयत आई है, क्या चीजें इंसान को हक और बातिल में फर्क करने से रोक देती। कुल इनकाना आबाओकुम व अबनाओकुम व इखवानोकुम व अजवाजोकुम व अशीरतोकुम व माल व तिजारत व मसाकिन। ये आठ चीजें बताएंगे कुरान। या हबीब इनसे कह दो क्या चीजें रोकेंगी तुम्हें? तुम्हारे वालिदैन। पता है कि हमारा बाप गलत है और वो जो बाप के सामने इस वक्त आके खड़ा हुआ है वो सही, लेकिन हम बाप का साथ देंगे क्योंकि हमारा बाप है। हक और बातिल का मसला नहीं। जंगे बदर में वाकयात हुए और इसके बाद की लड़ाइयों में भी बात बहुत लंबी हो जाए। आबा व अबना हुकुम, औलाद। पता है कि औलाद गलत है मगर औलाद। मैंने 3-4 बार इस अजरे में तलहा और जुबैर वाले जुबैर का तस्किरा किया। जुबैर एक बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत रह चुके, खानदान अहले बैत के बहुत क्लोज थे, रिश्तेदारी के हवाले से बात कर रहा हूं। जनाब खदीजा इनकी सगी फूफी, इनके बाप अव्वाम की बहन, जनाब सफिया जुबैर की मां। सफिया कौन है? अबू तालिब और अब्दुल्ला की बहन। मैंने बहुत तफसील बता दी, दोहरा नहीं रहा। और जब पैगंबर का इंतकाल हुआ اور پہلا مرحلہ تھا زبیر نے اہل بیت کا پورا ساتھ دیا. وہ بڑی مشکل منزل تھی وہ فدق والا مسئلہ اور گھر کا دروازہ. بعد میں اتنا اگینسٹ ہوئے کہ تلوار نکال کر مولا کے خلاف جنگ جمل میں آئے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب مولا نے ان کو یاد دلایا تو وہ پشیمان بھی ہوئے, نادم بھی ہوئے, اور حضرت عائشہ کا لشکر چھوڑ کے واپس جانے لگے. تو کسی علی والے نے ان کو قتل کر دیا پہچان کر کے یہ تو ان کا. اور پھر مولا نے کہا اللہ زبیر پر رحمت نازل کرے. بہت لمبی بات ہو رہی. بگڑے کیسے؟ یعنی بگڑے کا مطلب یہ کہ یہ حق پر رہتے رہتے اور اہل بیت کے کلوز ہوتے ہوتے وہاں کیسے چلے گئے؟ یہ وہی بات تھی جو میں نے کہی ابناؤ کو. تمہارے بیٹے, جب ان کا بیٹا جوان ہوا عبداللہ ابن زبیر, جس نے کربلا کے واقعے کو فلی ایکسپلائٹ کیا, یوز کیا اپنی حکومت کے لیے. عبداللہ ابن زبیر کربلا کے واقعے کے بعد حسین کے خون کا نعرہ لگا کر مکے اور مدینے پہ قبضہ کر کے اپنے آپ کو حکمران بنا لیا. کربلا سے اگر صحیح معنوں میں دنیاوی فائدہ کسی نے پہلی بار لیا تو یہ عبداللہ ابن زبیر. بیٹا بالکل بگڑ گیا تھا. جو بار بار معصوم کہتے ہیں کہ اپنی اولاد سے غافل نہ ہونا, تمہارا دشمن تم پر اتنی توجہ نہیں دے رہا ہے جتنا تمہاری اولاد پہ دے رہا. کینیڈا کا ایک بہت ہی مشہور پروونس ہے انٹاریو, جیسے ہماری اسٹیٹ ہوتی ہے وہاں پروونس ہوتے ہیں انٹاریو. اور انٹاریو جو ہے نا وہ ذرا سا پورے کینیڈا کو ڈس بیلنس کر رہا. یعنی میں رفلی کہہ رہا ہوں کہ پورے کینیڈا کی 80% پاپولیشن یہاں پہ جمع ہو گئی ہے, اور باقی 20 اتنے بڑے کینیڈا میں. اتنا بڑا کینیڈا انٹاریو کے اندر, وہ ٹورنٹو بھی ہے, مسیساگا بھی ہے. وہاں کی ایجوکیشن منسٹر کا بیان میں نے خود پڑھا تھا کہ یہ جو نئے نئے امیگرینٹ آ رہے ہیں نا, مراد مسلمان تھے, ہمیں ان پہ کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے. اب یہ الفاظ میرے مفہوم یہ تھا کہ جو ٹائم ویسٹ کرنا ان پہ کام کرنا, ہمارا ٹارگیٹ تو ان کے بچے ہیں. اس نے کھل کے کہہ دیا. باقی دنیا کے ملک یہ کھل کے نہیں کہتے ہیں, لیکن وہ نشانہ ہمارے بچوں کو بناتے ہیں, چاہے وہ پریپ ہو, چاہے وہ پرائمری ہو, چاہے وہ سیکنڈری ہو, چاہے وہ وی سی ای ہو, چاہے یونیورسٹی ہو. چنانچہ وہ جو پرابلم وہاں کا ہے وہ شاید یہاں کا بھی. ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ جن کو ان کی ڈگریز کی بنا پہ امیگریشن ملا ہوتا, وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں, اور ان کے بچوں کو بہترین جاب مل رہے ہیں کہ جو ان کے سسٹم کے اندر پلے بڑھے. یہ میں ذرا سا موضوع سے پھر ہٹ رہا ہوں. اچھا ویسے حرج نہیں تھا, آج ٹائم نہیں. یہ وہ جملہ ہے جو مولا نے نہج البلاغہ میں اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا, حسن بیٹا اپنی اولاد سے غافل نہ ہونا, تمہارا دشمن ان کی تاک میں بیٹھا ہوا ہے. تاک میں بیٹھنا کسے کہتے ہیں؟ کسی شیر کے شکاری سے پوچھیے. وہ جب درخت کے اوپر جا کے رات کے اندھیرے میں بیٹھا ہوتا ہے, مغرب سے لے کر فجر تک ایک ایک سیکنڈ اس کی توجہ ہوتی ہے, ادھر سے شیر آ رہا, ادھر سے شیر آ رہا. دشمن بیٹھا ہے ہمارے بچوں کے لیے غافل نہ ہونا. مولا نے بھی وہ اصول بتایا. انٹاریو پروینس کے ایجوکیشن منسٹر جو خاتون تھی, اس نے بھی کھل کے یہ بات کہی. باقی کھل کے نہیں کہتے, دل میں سب کے یہی کہ کام تو ان کے بچوں پہ کرنا ہے, تو بچوں پہ کام ہوا. زبیر ابن عوام کا بیٹا عبداللہ ایسا دشمن اہل بیت بن گیا کہ اپنے باپ کو بھی اس نے اپنے راستے پہ چلایا. میں خود اپنی مثال دے دوں آپ کو, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. بمبئی کے ایک مومن ہے, بمبئی کے ایک مومن مرحوم غلام عسکری صاحب, جنہوں نے تنظیم المکاتب قائم کی, دینداری تحریک کے سربراہ. پہلے ان کے خطابت کا انداز کچھ اور تھا, وہی جو عوام کو پسند ہے. جب دیکھا انہوں نے کہ ہمارے اس انداز خطابت سے قوم گمراہ ہو رہی, بالکل اپنے آپ کو بدلا 180 ڈگری کا اینگل, اور اس کے بعد تبلیغ کی, تو کتنے میں جانتا ہوں بمبئی کے مومنین کو جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بدل گئی, ہماری عورتوں نے حجاب مولانا کی وجہ سے کیا, عورتوں نے کہا کہ ہم نے حجاب ان کی وجہ سے کیا. آج ان کے بیٹے اسی میلبرن میں موجود ہیں, وہ وہی پرانے راستے پہ چلے گئے کیونکہ اب ان پہ کام کسی اور نے کیا. میرے جاننے والے کراچی, جن کے والدین پورا دین بقول ان کے مجھ سے سیکھا ہے, ان کے بیٹے کسی اور راستے پہ چلے گئے. تو یہ تاریخ اسلام کی वो हकीकत है जो जुबैर के वाके में बेटा बिगड़ गया। हमारे दुबई अबू धाबी के कितने मोमिनीन मिलते हैं। मैं हैरत से कहता हूं, आप मेरे खातिर उस जमाने में सबसे लड़े और आज आपका बेटा जवान हुआ, उसने आपको बहका दी। अख्तर शीरानी उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर, नौजवानों के शायर कहलाए जाते हैं, बहुत मशहूर शायर, और जितने मशहूर शायर हैं उतने ही मशहूर शराबी। 40-41 साल में लीवर फेल होने से इसी कसरत शराब नोशी की बिना पे मर गए। एक बार किसी ने उनसे पूछा था कि आप इतनी शराब पीते हैं, इतनी शराब पीते हैं, पूरी पूरी रात घर के बाहर रहते हैं और इतने सोबर घराने से आपका ताल्लुक है, आपके वालिदैन कुछ नहीं कहते? उन्होंने कहा कि दुनिया को सआदतमंद औलाद मिलती है, मुझे सआदतमंद वालिदैन मिले। तो आज ऐसे सआदतमंद वालिदैन है कि जिनके बेटे अपने सही रास्ते पे चलने वाले वालिदैन को अपने रास्ते पे चला रहे। कुरान ने कहा जुबैर इब्ने अवाम का बेटा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये नाम याद रखिएगा, मुख्तारनामे में यकीनन आया होगा। मैंने मुख्तारनामा कभी नहीं देखा, इतना टाइम मेरे पास था ही नहीं, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने जुबैर बेटा बिगड़ा, खुद नहीं बिगड़ा, अपने साथ बाप को भी लेके बिगड़ गए। इनका ना आबाओकुम व अबनाओकुम, ये सूरह तौबा की आयत, व इख्वानोकुम, तुम्हारे भाई। ऐसे भी कितने वाकयात, पता है कि ये काम गलत हो रहा है लेकिन चूंकि हमारा भाई कर रहा तो भाई का तो साथ देना ही देना। अब वो सगा भाई तो नहीं, लेकिन एक मिसाल दे दूं, करबला के वाकये के बदतरीन आदमियों में से एक का नाम उमर साद, ज़ियारत आशुरा में उसमें भी लानत है नाम लेकर। उमर साद का फर्स्ट कजिन हाशिम मिरकाल मौलाए मुत्तकियान के कितने मुखलिस सहाबियों में, जंग सिफीन में मौला की क़यादत में हाकिम शाम से जंग करते हुए शहीद हुआ। उसके मरने के मौला ने उसको एक अलम दिया था और उसके बाद उसके बेटे ने अलम संभाला और वो भी अपने बाप के साथ मौला पर शहीद हो गया। एक ही फैमिली। तो अब ये कि कुरान कहता है कि क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए, बाप हो के भाई हो के बेटा हो, हक की दर है, लेकिन नहीं होता ये कि अबनाकुम व इख्वानकुम, तुम्हारे भाई, व अज़वाजकुम, और ये तो हर घर का मसाला, शौहर ठीक है तो बीवी गलत है और गलत बीवी शौहर को अपने रास्ते पर चलाएगी, और अगर बीवी ठीक है तो शौहर गलत है और ये गलत शौहर बीवी को अपने रास्ते पर चलाएगी। और फिर कुरान ने अशीरतुकुम, एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर रही है कि बात ही खत्म हो गई, और तुम्हारी कम्युनिटी अशीरा, दावत ज़िल अशीरा सुनी है ना आपने, वो यही अशीरा, तुम्हारा कबीला, तुम्हारा खानदान, ये तुम्हें हक पर चलने से रोकता। आदमी अपने पूरे खानदान के अगेंस्ट नहीं जा सकता। शेर के बारे में मशहूर है कि जो पानी का फ्लो होता है शेर उसके अगेंस्ट तैरता, बाकी सब तो जिधर पानी उधर खुद भी बहने लगते हैं। कहा यह तुम्हारी कम्युनिटी, ये तुम्हारा कबीला, ये तुम्हारा खानदान, ये तुम्हारी फैमिली, ये तुम्हें हक पर चलने से रोकेगी। बहुत 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 कम ऐसे नेक लोग होते हैं जो हक की खातिर पूरे खानदान को छोड़ के सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। ये भी आयत का तर्जमा कर रहा हूं। फिर तीन चीजें कुरान ने और कही जो आदमी को हक से रोकती है। नंबर एक, वह माल इन तरफ तुमूहा, वो माल जो तुमने जमा किया, अगर हक पर चलोगे तो माल जाय होगा, दियत देना पड़ेगी माल जाय होगा, मीरास देना पड़ेगी माल जाय होगा, मैं इस पे आ रहा हूं। और तिजारत, तिजारत का मतलब है क्या, तक्षौना किसाद होहा, तुम्हें डर है कि अगर हक पर चले तो तुम्हारी तिजारत में किसाद आ जाएगा, कमी आ जाएगी। बिजनेसमैन कितनी जगह उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है गैरों से, वरना बिजनेस में लॉस होगा, वरना लोग उससे बिजनेस करना बंद कर देंगे। अब मैं समझा नहीं रहा हूं, आयत के तर्जुमे में इतना टाइम लग गया। वह मसाकिन, और तुम्हारे आलीशान मकाना, सूरह तौबा ने कहा ये तुम्हें रोकते हैं हक पर चलने से। तो अभी बहुत इसमें जरूरी कि आदमी इस तरह से जिंदगी गुजारे कि ये खानदान और कबीला, खानदान और कबीले के अंदर कम्युनिटी आती है, यहां ऑर्गेनाइजेशन और इमामबाड़े भी आ गए। ये हमारा इमाम बाड़ा, वो तुम्हारा इमाम बाड़ा, वो तुम्हारा इमाम बाड़ा, नहीं ये तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा, हर इमाम बाड़ा फातिमा जहरा का है, हर इमाम बाड़ा हुसैन इब्ने अली का, ये उनका घर है, कोई ताल्लुक तुम्हारा उनसे इससे नहीं। तो लेकिन अब हो जाता है ना, तो उसमें फिर फैसला मैं ये कर रहा हूं, इस तरह की रिटायरमेंट ले लूं ताकि फिर एक बार वो पोजीशन जो कराची में थी, कि किसी एक खास ग्रोह तबके इमामबाड़े ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं, तो हक कहना आसान हो जाए। लेकिन हक और बातिल, करबला हक और बातिल का फैसला करने वाला क्राइटेरिया है कयामत तक, हक और बातिल कहते किसे। अच्छा, एक जुमला इसमें बहुत मशहूर है आका हसन मुश्तबा का, कि हक और बातिल में चार उंगलियों का फर्क है, चार मिली हुई उंगली है। जो आंख से देखो वो हक है, जो कान से सुनो वो बातिल है। लेकिन इससे पहले अल्लाह के रसूल ने हक और बातिल का फर्क बताया। अब ये जो है उंगलियों का फर्क, चार उंगलियों का हक और बातिल, इसमें आ रहा है आज का सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि आपने आंख से देखा, कैसे आप यकीन करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये अलग मौजू, अहम है, टाइम नहीं। ये तो है दूसरों से इसका ताल्लुक सोशल मीडिया, इसमें आजकल आ गए। जो रसूल फैसला कर रहे हैं इसका ताल्लुक हमसे और आपसे, हम और आप मसला, क्योंकि अय्याम अज़ा का पहला अशरा है और आज अशरे की आखिरी मजलिस है और दुनिया भर में हो रही होगी पहले अशरे की आखिरी मजलिस है। तो ये मजलिस भी हमारे यहां जो होती, देखना है हक वाली मजलिस है कि बातिल वाली मजलिस है। क्राइटेरिया रसूल बता रहे हैं। पैगंबर की एक बहुत ही मशहूर हदीस है, लेकिन जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूं शेख तबरसी की, उसके अंदर ये कंप्लीट हदीस है। पैगंबर फरमाते हैं, जरा सोचिए हदीस पे गौर कीजिएगा, अल हक मुर्र व सकील वल बातिल हुल्व व सहल। फर्क कह रहे हैं, ये हक और बातिल का फर्क यह है कि हक जब सुनोगे कड़वा लगेगा, हक हमेशा कड़वा लगेगा, और हक सुनने के बाद सकील, तुम्हें लगेगा कि बोझ तुम्हारे ऊपर आ गया। भाई आपने नमाज के मजलिस सुनी, एक बोझ नमाजें पढ़ना, औरत ने हिजाब की मजलिस सुनी, एक बोझ मुझे हिजाब करना, मर्द ने हलाल हराम माल की मजलिस सुनी, मुझे हलाल हराम का ख्याल रखना, पता नहीं कितने जॉब छोड़ना पड़े, कितने बिजनेस बंद करना पड़े, कितने लोगों को दियत का पेमेंट करना पड़े, कितनी बहनों और भाइयों को मीरास देना पड़े, बोझ आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं है कि बहुत सारी मजलिसें आप सुनते हैं तो वो बहुत कड़वी लगती है और उसके बाद फिर एक बोझ आता है। और पैगंबर कह रहे हैं बल बातिलो हलवुन, बातिल हलवा होता, ये हलवा जो उर्दू में इस्तेमाल है ये अरबी का लफ्ज है, बहुत मीठा मीठा मजेदार, 3 घंटे में बैठ के सुनिए तो मजा ही मजा आएगा। और सहलुन, और जब उठोगे तो हल्का फुल्का, कोई बोझ नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं तुम्हारे ऊपर, जैसे आए थे उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा हल्के होके जाओ। एक आदमी कई दिनों से नहीं नहाया है, कई वीक से नहीं नहाया है, किसी वजह से फंस गया कहीं। हम लोग हज में, अब तो इंतजाम बेहतर हो गए, पहले 5-5 दिन नहाने का मौका नहीं मिलता था, और गर्मी का हज, पसीना, घर, गुबार, मिट्टी, धूल धूल, 5 दिन के बाद जब मक्का वापस आके नहाते थे इतना हल्का फुल्का हो जाते थे। क्या बातिल की पहचान ये, कि और हल्के होके जाओगे। अच्छा, अब तक नमाजें नहीं पढ़ी, अब तक रोजे नहीं रखे, अब तक वाजिबात की पाबंदी नहीं की, अब तक अपने आप को हराम से नहीं बचाया, लेकिन जरा सा अल्लाह ने गिल्टी कॉन्शियस बनाया है ना, वो कभी परेशान करता था, अब मजलिस में आके बैठे का कोई फिक्र की जरूरत ही नहीं। मौला का तो काम ही यही है कि इधर तुम मरोगे, इस्तकबाल करके तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, ना किसी गुनाह का सवाल होगा, ना कोई सजा होगी, ना कोई अजाब होगा। कितना हल्का हो गया आदमी, जो थोड़ा बहुत गिल्टी कॉन्शियस होता है, क्योंकि मासूम से पूछा गया कि जिस आदमी के पास कभी इस्लाम पहुंचा ही नहीं, ओ कैसे इलाके में रहता है कि नाम इस्लाम नहीं पहुंचा, क्या अल्लाह उसको भी सजा देगा। बहुत लंबा एक जवाब दिया, एक सवाल बहुत अहम है, जिस नॉन मुस्लिम ने कभी इस्लाम को सुना ही नहीं। तो इसकी एक शिक यह कि इमाम ने स्टार्ट यहां से किया, कहा कुछ चीजें ऐसी जो अल्लाह ने आदमी के नेचर में रखी है कि ये चीज सही है या गलत है, अगर उसने उसकी भी मुखालिफत की, नेचर में है कि सच बोलना अच्छी चीज, नेचर में यह है कि सीनियर का एहतराम करो, चाहे उसकी बात नागवार भी गुजरे, मिंबर पे जाके उसकी माँ बहन बाप एक ना कर दो, ये नेचर में अल्लाह ने रखा सीनियर का एहतराम, गीबत ना करो, किसी की चोरी ना करो, इनके बारे में उससे भी सवाल होगा। अब जरा सा जो आदमी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कोई मजलिस वगैरह में नहीं आया है, वो बाहर घूम रहा, लेकिन एक बोझ तो है ना, आएगा सुनेगा कोई परवाह नहीं है। मौला को तो अल्लाह ने बनाया ही इसीलिए है कि जो अली को मान ले उसके सारे गुनाह माफ। तो अब हल्का फुल्का होगा कि नहीं, जितना खुश खुश उठ के जाएगा। ये होती है मजलिस, ये होता है अंदाज़े खिताबत। पैगंबर कह रहे हक कड़वा भी लगेगा, हक सुनने के बाद एक बोझ भी तुम पर आएगा, बातिल तुम्हें मजेदार लगेगा हलवा, और बहुत हल्का फुल्का तुम्हें कर देगा। जो थोड़ा बहुत एहसास था गुनाह का वो भी खत्म होके रह जाएगा। ये पैगंबर की हदीस है। अच्छा ये जो आम चीजें हैं, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कड़वी चीज हक है, ना पैगंबर ये कह रहे हैं कि हर कड़वी चीज हक है, लेकिन जो भी हक है वो बहरहाल कड़वा जरूर है। अच्छा ये वाली हदीस मौला के फजाइल में भी है। अगर ये हदीस के जो दो टुकड़े हैं ना, एक को ले जाइए दुश्मनान अहले बैत, एक को ले जाइए मुहिबान अहले बैत। हक कड़वा भी है, बोझ भी है। दुश्मन अहले बैत जब अली का जिक्र सुनेगा उसे कड़वा भी लगेगा, उसे बोझ भी लगेगा अपनी फितरत पर। और दूसरा टुकड़ा है दुश्मन मुहिबान अहले बैत के लिए। मुहिबान अहले बैत जब बातिल के बारे में सुनेंगे, जो बातिल हैं, तो उनको मजा भी आएगा और बहुत हल्के फुल्का भी अपने आप को महसूस करेंगे। दोनों पहलू हैं हदीस में। लेकिन जो हमारे और आपसे मुताल्लिक डायरेक्ट है वो ये कि हक की बात हमेशा कड़वी होती है। ये उसूल एक क्राइटेरिया पैगंबर ने बताया, इसी को आका हुसैन ने करबला के मैदान में एक और जुमले से वाजे किया। कहा जाता है कि आशूर की सुबह का ये फरमान है। बहुत छोटा, बातें बहुत सारी थी, कहां से कहां मजलिस जा रही है, मैं इसे बहुत जल्दी जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। आका हुसैन का एक जुमला मैदान करबला का है आशूर की सुबह का। फरमाते हैं, इन नास अबीद दुनिया व दीन लसेकुन अला व दीन लसेकुन। या लोग जो है ना, ये दुनिया के बंदे, दुनिया परस्त, इनको दुनिया चाहिए। दीन का तस्किरा करते हैं, लेकिन दीन जो है ना वो एक चटखारा है, एक चटनी है, एक स्पाइसी चीज है इनकी जबान पर। बड़ा मजा आता दीन की बात करने पे, लेकिन जब दीन की वजह से कोई इम्तिहान देना पड़ता है सब भाग जाते हैं। उस वक्त तक दीन बहुत अच्छा है, जब कोई इम्तिहान ना देना पड़े मजा आता है, मजे मजे से बात करते हैं। अब आप बाजी बात बताइए, मजमा भागेगा कि नहीं? आप आराम की खराबी बताइए, मजमा भागेगा कि नहीं? बल्कि यहां तो मैं एक अजीब हकीकत देख रहा हूं अपनी कौम की। कुछ चीजें मैं अपने स्टाइल और अपनी नेचर के खिलाफ करने पे मजबूर हूं इन बातों की वजह से। लोग दुनिया के बंदे हैं, असल चीज उनको दुनिया चाहिए, फिर दीन का जिक्र क्यों करते रहते हैं? फिर क्यों पहुंच जाते हैं ऐसी सिटिंग्स और इज्तिमात में जहां दीन का जिक्र चटनी, एक चटखारा, एक मजेदार चीज, एक स्पाइसी चीज, और ऐसा ही दीन उनको चाहिए। और जब जरा कोई इम्तिहान देना पड़े दीन के हवाले से, सब के सब वहां से भाग जाते हैं। ये मौला की वो हदीस है जो आपको अकवाले इमाम हुसैन नाम के हर आर्टिकल में मिलेगी, हर बुक में मिलेगी, इंटरनेट की हर वेबसाइट पे मिलेगी। ये हदीस बहुत मशहूर है। लेकिन अब देखिए, यहां पर अपने आप को भी आदमी को सेटिस्फाई करना। मैंने जो हमारा मौजूद दिया चल रहा था, जरा सा एक दो बातें उसकी वाजे कर दूं, क्योंकि आज आखिरी तकरीर। मैंने अब ये मजलिस मेरी आज की मजलिस दो दिन पहले किया शब आशूर की मजलिस से जाके कंटिन्यू हो रही। मौलाए मुत्तकियान की इतनी मुखालिफत क्यों थी? इसलिए कि अलहक व मुर्र, अली जो बात कह रहे थे मजमे को कड़वी लग रही थी, और अली जो बात कह रहे थे ऐसा कड़वी बात भी आदमी सुन ले, बोझ लग रहा था, यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, एक ड्यूटी आ रही है। अली की जो बात सुनो तो ऐसा लगे कंधे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दी गई। परसों की मजलिस से कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन कल की मजलिस में शामे गरीबा एक जुमला मैंने कहा था, आका हुसैन ने जैनब पे एक जिम्मेदारी डाल दी, वह उस जिम्मेदारी ने जैनब को कैसा बदल दिया। बदला का मतलब माजल्ला ये नहीं कि पहले जैनब कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, पहले मर जाती जैनब, इस जिम्मेदारी ने जैनब को जिंदा कर दी। अली का हर कलाम ऐसा है, चाहे वो ज़ैनब कुबरा से हो या कंबर गुलाम से हो या फिजा कनीज से हो या हम जैसे लोगों से हो या दुश्मनों से हो। तो हम लोग अली को बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये तो कड़वी कड़वी बातें कर रहे हैं, और खाली कड़वी बातें नहीं कर रहे, फिर एक जिम्मेदारी भी डाल रहे हैं, वापिस करो ये मेहर। बोला हमारा क्या कसूर है, हमारी बेटी की शादी हुई थी, उसने शौहर के मेहर देकर गया था, हमें न लेना न देना, जायज तरीके से हमने ट्रांजेक्शन किया है, कहा लेकिन ये बैतुल माल का, इसमें हक है मुसलमानों का, तुम जानो, तुम्हारा दामाद जाने जिसने ये दिया, ये तुम्हें देना पड़ेगा। अब इसको ये नहीं लगेगा कि अली नाइंसाफी कर रहे, ये जो तुम्हारे पास 2000 दिरहम है वापिस करो, मौला मैंने उसको घोड़ा बेचा, ये उसकी कीमत है, तुम जानो और वो जाने, ये तो बैतुल माल का है, तुम्हें वापिस करना। अब ये जो अली ने इस तरह से खाली जबानी बात नहीं की, बोझ हो गया इन लोगों पर। तो उसी में एक वाकया मैं अक्सर पढ़ता हूं, यहां पढ़ने का मौका इसलिए नहीं मिला कि मेलबर्न में तो मजलिसें भी मैंने बहुत कम पढ़ी, और अब तो खैर शायद बिल्कुल भी ना पढ़ूं, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने ये वाकया पढ़ा था तो कुछ लोगों को बड़ा मुश्किल लगा, कहा कि ये वाकया गलत है, हम ऐसे अली को मानते ही नहीं, हम ऐसे अली को नहीं मानते। ये कनाडा की बात कर रहा हूं, इसलिए टोरंटो की बात कर रहा हूं, बल्कि यहां तक कह दिया गया कि ऐसे अली से तो हमारा प्राइम मिनिस्टर बेहतर है। जुमले थे, पूरा आशरा करना मुझे मुश्किल हो गया, रोज आना 20-25 मोमिनीन आके बैठ जाते हैं और मजलिस के बाद बहस करते हैं। अच्छा हमारे यहां एक सवाल तो होता है ना, किस किताब में लिखा, जब मैंने बताया किस किताब में लिखा है तो उनका जुमला यह था कि यह तो किसी दुश्मन अहले बैत की किताब है, दुश्मन अहले बैत की, तुम्हें पता है किसकी किताब है? नहीं, बस एक ऐसा वाकया है जो हमसे, अच्छा मैं आज कनाडा के उन मोमिनीन के इतराज की वजह से इसका प्रिंट आउट निकाल के लाया हूं, जबकि ये मेरी आदत नहीं, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता है। खैर अब ये नजर तो नहीं आएगा, इसकी हेडिंग है बैतुल माल का हार, हार माने वो नेकलेस। वाकई जरा दिलचस्प है, मैं नहीं पढ़ता हूं इस तरह से, टाइम भी नहीं है, खुलासा कर दूं। फरमाते हैं, अभी किसकी किताब है ये आखिर में आता हूं, वर्राम ने अपने मजमुए में ये वाकया लिखा जो इंतहाई नसीहत आमोज है। वर्राम कौन है? वर्राम हमारी तारीख के वो मुकद्दस आलिम है, कि ये कहा जाता है कि अगर वर्राम कोई बात कहे तो ये हदीस होगी, चाहे वो हदीस हमारे पास न भी हो, ये बगैर हदीस के कुछ नहीं कहते। ये नाना है इब्ने ताऊस के, जिनकी किताब आमाल में सबसे मुस्तनद किताबों में से एक मानी जाती, इकबाल मफाती में जगह जगह इसका हवाला है, वो चार रकत नमाज में भी, इन्ना लिल्लाह वाले अमल में भी, शेख अब्बास ने कहा कि जिसको तफसील देखना वो इकबाल में जाके देख ले, .org के अंदर जितने अमाल आपको मिलेंगे 90% में होगा इकबाल, उनके नाना, इकबाल के नाना नहीं, इकबाल लिखने वाले इब्ने ताऊस के नाना। इब्ने ताऊस ने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं मेरे मुंह में अकीक रखना और उस पर 12 इमामों के नाम लिखना, और फिर एक जुमला कहा कि ऐसी कोई हदीस नहीं है हमारे पास। याद रखिए, हमारे यहां आज भी जहां गुस्ले मैयत दिया जाता है, कफन के साथ अकीक लाया जाता है, कोई हदीस है अकीक के लिए? कोई हदीस नहीं। फिर क्यों अमल है? ये इस वजह से कहा कि चूंकि मेरे नाना ने, ये घर की बात, ये वसीयत की थी जब मुझे दफन करना तो मेरे मुंह में अकीक रखना जिसपे 12 इमाम के नाम हो, ताकि जब फरिश्ते सवाल करें तो इस 12 इमाम के नाम और अकीक की वजह से मुझे जवाब देने में आसानी। कहा कि मेरा नाना बगैर हदीस के कोई बात ही नहीं करता था, जब उन्होंने ये वसीयत की इसका मतलब यह कि हदीस होगी, तो मैं भी वही वसीयत कर रहा हूं। और खाली उन्होंने वसीयत नहीं की, वहां से लेके आज तक के मुज्तहिदीन ने कहा कि मरने वाले के मुंह में अकीक रखो। यानी मैं बता रहा हूं कि ये जिस आलिम की किताब में, इस आलिम का ये स्टेटस है कि वो एक आम सी बात कहे और लोग कहते हैं, लोग नहीं बड़े बड़े मुज्तहिदीन कहते हैं कि हदीस होगी। उन्होंने क्या लिखा, जल्दी जल्दी वक्त नहीं, मौला ने अपने बैतुल माल का इंचार्ज अबू राफे को बनाया, अली इब्ने अबी राफे को। यहां पे बैतुल माल में हीरों का एक हार आया, अगर टोरंटो का कोई मोमिन सुन रहा है और वो 15 साल पहले के उस कजिए से वाकिफ है, देख ले, मौला ने अपने हाथ से यह हार बैतुल माल में खुद रख दिया। मौला की एक बेटी को पता चला कि एक बहुत कीमती हार है। ईद का दिन करीब था, हज वाली ईद। उसने अभी राफे को पैगाम भेजा कि बैतुल माल में हीरों का एक हार है, तीन दिन के लिए, ओनली फॉर थ्री डेज, जो तीन दिन ईद के, यह हार मुझे आरियतन दे दे, बोरो करना चाहती हूँ। जैसे ही तीन दिन खत्म होंगे मैं यह हार वापस करूंगी, क्योंकि इस्लाम में हर ईद को तीन दिन मनाने का हुक्म है। लोग मिलने वाले आते हैं, खानदान वाले, रिश्तेदार। अबू राफे से अली की बेटी कह रही, हम तो आपके पैगाम सुनकर के अली की बेटी ने पैगाम दिया सारी शरीयत भूल जाए, अली की बेटी के आगे कौन सी शरीयत। अबू राफे ने कहा कि इसके लिए आपको मुझे कोई गारंटी देना पड़ेगी, और इसके बदले जमानत में खाली जबानी गारंटी नहीं, इतनी वैल्यू की कोई चीज रखवाना होगी। अली की बेटी से बात करें डायरेक्ट, यानी अली की डायरेक्ट बेटी, नवासी पर नवासी पर पोती नहीं, शहजादी ने, अली की बेटी है शहजादी। अबू राफे को वो जमानत दे दी, हार आ गए। इत्तेफाक से मौला ईद के दिन सबसे पहले अपनी बेटी के घर आ गए मिलने। हार देखा, मौला ने तो अपने हाथ से ही हार बैतुल माल में रखा था, वही हार अपनी बेटी के गले में देख लिया। बेटी, ये हार तेरे पास कहां से आया? शहजादी ने बताया, बाबा मैंने बैतुल माल से आर्जी तौर पे मंगवाया। अच्छा, बैतुल माल में अली की बेटी का भी एक शेयर, उनका हक है उसके अंदर, और ईद के फौरन बाद वापिस करूंगी। मौला ने अपनी बेटी से कहा, अभी हार उतारो। बेटी ने कहा, बाबा ये बैतुल माल में तीन दिन हार बंद रहेगा, ईद की छुट्टियां हैं, बैतुल माल बंद है, वहां बंद रहेगा, मैंने अगर मेरे पास ये आ जाए तो क्या हर्ज। मौला ने कहा कि बेटी, क्या तमाम मुहाजरीन की बेटियां ऐसा ही हार पहने हुए? जब नहीं तो तुम्हें क्या इख्तियार। फिर बुलाया बैतुल माल के निगरान अबू राफे को, तुमने ये हार मेरी बेटी को क्यों दिया, जबकि तुम्हें पता है कि बैतुल माल सारे मुसलमानों का बराबर से हिस्सा। हाथ जोड़े कहा, मौला आपकी बेटी के बारे में मुझे पता है कि वो इंतहाई अमीन है, और उन्होंने इसके बदले में गारंटी भी दी हुई है। मौला ने फरमाया, ये सच होगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें डिसऑनेस्ट करार दूंगा, और अगर मेरी बेटी ने इसके बदले में जमानत न दी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। ये बैतुल माल का हार नाम से पेज 427 पर यह हदीस लिखी। अच्छा, मौला की बेटी ने यह हार मंगवा लिया। उन्होंने कहा था कि हमारा कनाडा का प्राइम मिनिस्टर तो ये कर ही नहीं सकता, वो बेटर है मौला से, हम मानते ही नहीं इस वाकई को। चले, वो बाकी वैसे तो अपनी जगह, उसके बहुत जवाब। कहा, ये किताब किसी नासिबी दुश्मन है अहलेबैत की किताब। मैंने कहा, आप मोमिन हो गए, आप मवाली हो गए, आप अली के मलंग हो गए, और ये बेचारा नासिबी हो गया। पता है कि किसकी किताब है? जो भी मैंने पढ़ा, ये उर्दू में अवेलेबल है, पाकिस्तान में कोई जानने वाला और आप उर्दू पढ़ सकते हो तो मंगवाइए। ये है शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शुस्तरी की किताब, जो अकबर के जमाने में काजी बने थे ईरान से आकर, और उन्होंने शर्त लगाई थी कि मैं किसी एक फिका के मुताबिक फतवा नहीं दूंगा, फतवा अहले सुन्नत के मुताबिक दूंगा, लेकिन कभी फिके हनफी, कभी फिके मालिकी, कभी फिके शाफई। और इस तरह से वो फतवे देते थे, लेकिन हर फतवा शिया फिका का होता था, लेकिन कोई फतवा फिके हनफी से टैली करता था तो वहां फिके हनफी का नाम लेते थे, कहीं फिके शाफई। इतनी कमांड थी इनकी, जहांगीर ने इनको गिरफ्तार की। इन्होंने एक किताब लिखी थी हकाकुल हक, अल्लामा हिल्ली की किताब है, अकायद के मौजू में, खास तौर पर मौला की गदीर की विलायत, उसका जवाब लिखा था दुश्मन अहले बैत रोजबहन, उसका जवाब इन्होंने लिखा। ये किताब पकड़ी गई और इन्हें गिरफ्तार किया गया, और जहांगीर ने हुक्म जारी किया कि पहले तो इन्हें 100 कोड़े मारे जाए, आम कोड़े नहीं, वो कोड़े जो खारदार है, जिसके अंदर कांटे निकले हुए, इस मर्द जईफ के, बुढ़ापा था इनका, 100 कोड़े मारे जाए। उसके बाद ये सीसा जो है इसको पिघला कर ये इनको पिलाया जाए, और इसके बाद इनकी गुद्दी में सुराख करके जबान खींच के निकाली जाए, और उसके बाद इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। और चारों सजाओं पे अमल हुआ, उठा के इनके लाशें को आगरा शहर से बाहर फेंक दिया गया। करीब में एक शहर है ग्वालियर, इंडिया के लोग तो जानते हैं, आगरा से बहुत करीब, वहां एक ईरानी ताजिर आया था, रात को ख्वाब में शहजादी कोनैन को देखा रोती नजर आ रही और कह रही कि मेरा एक बेटा इस वक्त उसका लाशा शहर के बाहर जंगल में पड़ा है, एक खिदमत मेरी ये कर दे कि जाके उस लाशे को उठा के दफन कर दे। उस ईरानी ने दफन की। आज आगरा में शहीद सारिस का कितना शानदार रोजा वहां बना है, लेकिन जिसने अहले बैत के दीन के खातिर 100 कोड़े खाए, जिसको सीसा पिलाया गया, जिसकी जबान गुद्दी से खेल के निकाली गई, जिसकी गर्दन उड़ा दी गई, वो नासिबी सिर्फ इसलिए कि आपसे ये कह रहा है कि हलाल और हराम का ख्याल करो, सिर्फ इसलिए कि आपसे ये कह रहा है कि मुसलमानों का माल उसकी हिफाजत करो। आप बन गए अली के बहुत बड़े मौलाई, आप बन गए अली के बहुत बड़े मवाली, जो खाली जबानी बातें करते आए आज पूरी जिंदगी, जो आका ने कहा कि आखिरी के इंसानों की जबान पे होता है दी, और जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और उससे पहले पूरी जिंदगी उनकी देखी है। आज भी कहा जाता है शहीद सालिस काजी नूरुल्ला, वो बन गए नासिबी, वो बन गए दुश्मन अहले बैत क्योंकि हक की बात कही। तो ये जो एक मिजाज बन के रह गया कि जो चीज अपने खिलाफ लगे उसके ऊपर आपने ये देखे बगैर के कौन आदमी, इतना बड़ा आपने इल्जाम लगा दी। और यहीं पे मैं बात कर रहा हूं कि अली का ये वाकया बता रहा कि लोग अली के खिलाफ क्यों हुए थे उस वक्त, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो गदीर खुम में मुखालिफ हुए, वो तो पहले दिन से अली के खिलाफ थे। बात उनकी है जो अली के हाथ पर बैत करके खुद अली को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके लाए थे कि आइए या अबुल हसन आप हमारे हुक्मरान बने, फिर वो अली के खिलाफ क्यों हुए। और ऐसे खिलाफ के करबला में आका हुसैन से जो जंग की गई तो कहा गया कि असल दुश्मनी तो हमें तुम्हारे बाबा से, ये इतने खिलाफ क्यों हुए, उसकी वजह ये। आज मोमिन अली के खिलाफ हो जाता वो अली का नाम लेके तो मुखालिफत नहीं कर सकता, अली की सीरत की मुखालिफत। तो अब उसी में एक मसाला वो आया जिसको दियत का मसाला कहते हैं। देखिए वो इत्तेफाकन प्रेगनेंसी की दियत की बात आ गई, वरना इस्लाम में दियत का प्रेगनेंसी से ताल्लुक नहीं। हर वो नुकसान जो आप किसी को फिजिकल पहुंचाएंगे उसके ऊपर दियत वाजिब। आपने किसी को थप्पड़ मारा उसके स्किन का रुख कलर चेंज हो गया, दियत वाजिब हो गई। किसी को क्या मतलब, किसी को बेटे को भी अगर आपने इस तरह मारा तो आपने दियत वाजिब, बीवी पे भी इस तरह हाथ उठाया तो दियत वाजिब, शौहर पे भी इस तरह हाथ उठाया, क्योंकि मेलबर्न की एक मोमिना को जानता हूं जो शौहर को इतना ही मारती है। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता वरना बहुत ही पर्सनल बात होगी कि मैंने कहा कि लोग इसको जोक वाला जुमला ना समझे, ये हो रहा है यहाँ पे दियत वाजिब। टीचर ने अगर स्टूडेंट को मारा के खाल का रंग चेंज हो गया, दियत वाजिब। और ये मैंने खारादर में 1974 में मसाला बताया, और आज मेलबर्न में इंकिशाफ हुआ औरतों पर तो दियत है ही नहीं। अल्लाह की पना, इतना बड़ा गुना स्लिप ऑफ टंग नहीं है, क्योंकि आगे जब समझाया गया कि औरत पे दियत नहीं होती है इसलिए उसको मीरास में आधा हिस्सा मिल रहा है, दलील दी जा रही है। मैं उधर नहीं जाता। तो ये दियत तो हर चीज में, लेकिन प्रेगनेंसी का मसला ऐसा हो गया है कि बाकी चीजों की दियत जब आप पर वाजिब होगी ना तो आप उसी आदमी को देंगे, आपस में कंप्रोमाइज हो सकता है। जो माँ के पेट में बच्चा मौजूद है वो तो मर गया है ना, उसकी दियत उसके वारिसों को दी जाएगी, अगर नहीं दी गई तो वो आप पे कर्जा रहेगा। और इस जुमले का मतलब क्या है, इस जुमले का मतलब ये है कि जब आपका इंतकाल होगा तो आपकी जायदाद में पहले वो सारी दियतें निकाली जाएंगी, वो कर्जे हैं, पहले लाइबिलिटीज अदा की जाती है फिर किसी वारिस का इख्तियार। ना भाई को हिस्सा, ना बेटे को हिस्सा मिलेगा, ना बेटी को हिस्सा मिलेगा, ना बीवी को हिस्सा मिलेगा, ना बाप को हिस्सा मिलेगा, ना माँ को। जिन जिन की दियत आप पर वाजिब थी आपने नहीं दी, आपको पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर वाजिब है, कर्जा तो कर्जा है ना, वो खत्म नहीं होता। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं इस खुश्क मसले का, लेकिन चूंकि कम से कम मेरे पास 25 मुख्तलिफ मोमिनात के मसले आए और मोमिनीन के, तो इतना बोलना पड़ा कि इसका मतलब यह है कि मसला बहुत प्रैक्टिकल मसला है। अच्छा, अब इसकी तफसील मेंबर पे नहीं आ सकती। अव्वल तो अय्यामे अज़ा के पहले अशरे में कोई भी मसला शरई बताना लोग कबूल नहीं करते, मौलाना मजलिसें इसलिए नहीं होती। और फिर अगर कोई मसला आप बता भी दें तो उसकी तफसीलात बताना तो पॉसिबल ही नहीं। ये दियत इतना आसान मसला तो है नहीं। کہ آپ نے سنا اور آپ نے کہا کہ بتائیے کہ ہم پر کتنی دیتیں واجب ہیں. اس کے بہت مسئلے. نمبر ایک, دیت جو یہ عربی میں لفظ دیا ہے, اردو میں دیت پڑھا جائے گا. میں اردو کی مجلس پڑھ رہا ہوں, عربی میں رحمہ ہوگی لیکن اردو میں رحمت ہی کہیں گے. عربی میں برکہ ہے, اردو میں برکت ہی کہیں گے. تو دیت اول تو یہ ہے کہ کس کو دینا ہے. بچے کا حق ہے لیکن بچہ تو مر گیا نا, اسی لیے تو دیت واجب ہے. اب کس کو دیں گے؟ اور نمبر دو, کون آدمی یہ دیت دے گا؟ اور پھر نمبر تین یہ کہ یہ دیت بچے میں روح پڑھنے سے پہلے اس کو پریگنینسی کو ختم کیا کہ روح پڑھنے کے بعد ختم کیا. اور نمبر چار, دیت کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. کیا کفارہ؟ قتل کا کفارہ. قتل تو کیا ہے بچے, قتل کا کفارہ ہے, وہ کون رکھے گا؟ یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں جو میں نے پرسوں کہا تھا, تاکہ آدھے جو 25 میرے پاس سوال آئے ہیں, غالباً میرا اندازہ ہے کہ اس میں سے 15 کا جواب تو اسی ایک اصول میں آ جائے. میتھ میں ایک اصول ہے نا کہ کتنا ہی بڑا فیگر کیوں نہ ہو, ملٹی پلائی بائی زیرو کریں گے تو ریزلٹ ہمیشہ زیرو ہوگا, جواب زیرو ہوگا. دیت میں دو چیزیں ایسی ہیں آج کل جس کی وجہ سے دیت واجب نہیں ہوتی. واجب ہوتی ہے لیکن معاف ہو جاتی, اور کفارہ بھی. سب سے پہلی شرط یہ, دیت اس پر واجب ہے جس کے اپنے عمل سے یہ پریگننسی ختم ہوئی. جس نے اجازت دی ہے وہ نہیں, وہ گناہگار ضرور ہے, وہ الگ مسئلہ. دیت واجب نہیں. مسئلہ اگر عورت نے خود کوئی ایسی دوا کھائی, چاہے ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہو, خود سے کھائی, اس کے ہاتھ سے یہ دوا استعمال ہوئی اور پریگنینسی ختم ہوئی, دیت اس پہ واجب. شوہر نے اس کو کوئی دوا کھلائی یا کوئی انجیکشن لگایا تو اس پر واجب. اور ان دونوں نے صرف پرمیشن دی اور ڈاکٹر نے, لیڈی ڈاکٹر نے یہ عمل کیا, تو دیت اس عورت پہ واجب, لیڈی ڈاکٹر. لیکن باپ اور ماں جو گناہگار ضرور ہیں کہ تم نے اجازت کیوں دی, اگر وہ کہیں کہ ہم تمہیں دیت سے معاف کرتے ہیں, تو پھر وہ دیت, وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ گناہگار ضرور ہے, دیت اس سے بھی معاف ہو گئی. تو یوزولی آج کل کوئی ڈاکٹر, کوئی ہیلتھ ورکر, کوئی نرس, وہ اس میں انوالو ہوتی ہے. ہاں ہمارے یہاں پاکستان کے خصوصاً چھوٹے شہروں میں اب تک یہ رواج ہے کہ کوئی ایسا پریگننسی کا کیس آ گیا تو وہ دیسی نسخے, دیسی دوائیاں, خود کھا لو, خود یہ چیز پی لو, خود ایکسرسائز کر لو, خود جمپ لگا لو, تب تو دیت اس ماں پہ آئے گی. ورنہ دیت اس وجہ سے نہیں آئے گی کہ کس کے ہاتھ سے یہ عمل ہوا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, کفارے کا بھی یہی, اگر ماں نے خود اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی دوا کھائی, انجیکشن لگایا, سیرپ پیا, کوئی ایسا ایکشن کیا, تو اس پر کفارہ ہے. ورنہ گناہگار تو ہے, کفارہ اس لیڈی ڈاکٹر پر آئے گا. اور یہاں پر اگر پیرنٹس کہیں کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں تو دیت معاف ہوگی, کفارہ معاف نہیں ہوگا, وہ اس لیڈی ڈاکٹر کو رکھ دینا ہے. دیت ہے بندوں کا حق, کفارہ ہے اللہ کا حق. تو بندوں کا حق تھا, انہوں نے معاف کر دیا. یہ جو لیڈی ڈاکٹر نے عمل کیا, یہ پیسے دینا تھے اس بچے کے وارثوں کو. وارث کون ہے؟ ماں باپ, وہی جن کی اجازت مل رہی ہے, دینا تھے, انہوں نے معاف کیا. لیکن کفارہ معاف نہیں ہوگا. بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس میڈیکل فیلڈ میں آتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, انگلینڈ میں ہر لیڈی ڈاکٹر کو یا ہر ڈاکٹر کو یہ اختیار کہ اگر اس کے ریلیجیس عقیدے کے خلاف ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ عمل نہیں کروں گا. بہت لمبی بات ہو جائے گی, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 90% مسئلے تو اس مسئلے کی وجہ سے دیت کے ختم ہو جائیں گے, گناہ اپنی جگہ رہے گا. اور نمبر دو, اگر کبھی یہ پریگنینسی نقصان دہ ہے عورت کے لیے, تو روح پڑھنے سے پہلے اجازت ہے اس کی. اور نقصان دہ کسے کہتے ہیں؟ روح پڑھنے سے پہلے. روح کب پڑتی ہے؟ کہا کہ یہ میڈیکل کے ایکسپرٹ بتائیں گے 4 مہینے کے بعد, 12 ویک کے بعد, 11 ویک کے بعد. لیکن وہ بھی اگر نقصان دے, نقصان دے کی تعریف سن لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کی شریعت کتنی بڑی. کہا کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے, ٹھیک. کہا نمبر دو, ماں کی جان کو خطرہ نہیں, بچہ ڈسیبلڈ پیدا ہوگا, ایڈس کا مریض پیدا ہوگا, ایسی بیماری کا میں پیدا ہوگا, ماں کے لیے پوری زندگی زحمت ہے اس کو پالنا. نمبر تین, اسپیشل چائلڈ پہلے سے اگر پتا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے. نمبر چار, औरत के साथ रेप किया गया और उसके नतीजे में प्रेगनेंसी हो गई, उसकी तौहीन है, उसकी बदनामी है। नंबर पांच, जानबूझकर उसने गुनाह किया, कर तो लिया गुनाह, लेकिन अब अगर उसके यहां बच्चा हुआ तो ऑनर किलिंग हो जाएगी रूह पढ़ने से पहले, जो फेमस यह है कि 4 महीने में रूह पढ़ती इजाजत। आखिरी तो बहुत अहम मसाला, और कहा कि और इस औरत के ऑलरेडी इतने बच्चे कि यह बच्चा बिल्कुल हेल्दी स्मार्ट सब कुछ है, लेकिन इसकी परवरिश करना मुश्किल हो रहा, पहले से 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनको पाला नहीं जा रहा, यहां भी इजाजत है, लेकिन सब बिफोर 4th मंथ। तो ये बहुत सारे इसमें मसले हैं, मैं तो जल्दी जल्दी वो 25 सवालात की वजह से मैंने ये बात छेड़ दी, लेकिन दियत ये क्या है, ये कर्जा है जो देना है, और इसमें एक कंडीशन वो आती है कि ये देना पड़ता है मुश्तहिद को, लेकिन वो बताने का वक्त नहीं। वो ये चीजें थी जो जब अली इस पे अमल करा रहे हैं तो लोगों को बहुत मुश्किल लग रही, और क्योंकि आज भी मेलबर्न में कर्फ्यू है तो मजलिस अपने वक्त पे खत्म करना है, तो बस मैं आ गया मसाइब। और यहां पे लोग उलमा, कुछ उलमा एक रिवायत पढ़ते हैं, ये रिवायत मुझे नहीं मिली, लेकिन बहरहाल इतनी मशहूर है, पढ़ी जाती है, उससे रब्त दे के मसाइब पे आ रहा हूं। और वह रिवायत ये पढ़ी जाती है कि जब यजीद ने अहले बैत को रिहा किया शाम से, तो सज्जाद को कैद खाने से बुलाया, जो अरबईन में आप मसाइब सुनते हैं और इंशाल्लाह इस साल भी सुनेंगे, तो सबसे पहले तो खूबा या दियत सामने रखी, 1000 दीनार होते हैं या 10,000 दिरहम, या दियत में एक छोटा सा मसला कह दो, दियत में गोल्ड या सिल्वर देना होता है, कैश नहीं है, छोड़ दे इसको, तो सामने दियत रखी। ये उलमा पढ़ते हैं, मुझे किसी किताब में मिला नहीं, लेकिन मैं इतना बड़ा कोई रिसर्च स्कॉलर हूं भी नहीं, और ये जुमला कहा था कि ये मैंने आपके बाबा को कत्ल किया, मैं उसका खून बहा दे रहा हूं, और मौला सज्जाद ने कहा यह खून बहा देना है तो रसूलुल्लाह को देना, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। वहां भी मसला दियत का इन्वॉल्व हुआ या यजीद ने चाह, दियत देने से जो आदमी की गलती है वो माफ हो जाती है, लेकिन हुसैन का कत्ल, ये कायनात का इतना बड़ा जुर्म कि तुम सारी दुनिया की दौलत उठा के दे दो, हुसैन के बदन पे लगने वाले एक जख्म का जवाब नहीं हो सकेगा या वो माफ नहीं होगा। और जैसा कि मेरे मजलूम आका सज्जाद ने एक जुमला कहा, उसी को जहन में रख के बात को इख्तिताम तक पहुंचा रहा, एक जुमला है ये, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, एक बहुत अहम रावी, बहुत अच्छे रावी, मुखलिस हैं, मिनहान, जब उन्होंने कहा था कि मौला सज्जाद आप इतने साल से रो रहे, करबला के वाकये को तो इतना अरसा गुजर गए, कब तक रोएंगे, यही रिवायत अभी आप 10 दिन के बाद चौथे इमाम की शहादत में सुनेंगे ना, 2 वीक के बाद, मौला सज्जाद का जुमला क्या था, कि क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा, याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा वो भी मारा नहीं गया, खाली खो गया, आंखों के सामने ना रहा, तो इतना रोए, वब्यज्जत ऐनाहु वहुवा कज़ीम, कुरान कहता है वो बहुत ही ज्यादा सब्र करने वाले थे, फिर भी आंखें सफेद हो गई, मेरे तो 18 यूसुफ मेरे सामने जलती रेती पे तड़प तड़प के दुनिया से रुखसत हुए हैं। अतः फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मिनहाल ने अगला सवाल किया, लेकिन मौला वो तो फिर सब शहीद हुए ना, शहादत तो बड़ा रुतबा, तो क्या जवाब दिया मौला ने कि अगर खानदान वालों की शहादत को बर्दाश्त भी कर लूं तो सिर्फ एक बात बता, क्या बहनों और फूफियों और माओ का नंगे सर बाजारों में जाना, दरबारों में जाना, ये भी कोई फजीलत और रुतबा है? अरे सज्जाद खून के आंसू रो रहा है जब उसे चादर ज़ैनब याद आती है, सज्जाद खून के आंसू रो रहा है जब उसे सकीना के रुखसार पे लगने वाले तमाचे याद आते हैं, और अब करबला का जिहाद इस मंजिल में दाखिल हो गया। 10 मुहर्रम का दिन खत्म हुआ, हुसैन मारे गए, हुसैन का सारा घराना मारा गया, और 11 मुहर्रम की तारीख आई, अहले बैत का लुटा हुआ काफिला कूफे में दाखिल हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि आज की मजलिस जियारत की या स्वयं की मजलिस भी, हमारे यहां कोई आम सा आदमी भी मरता है तो हम लोग उसके लिए फातिहा का इंतजाम करते हैं, पानी भी रखा जाता है, खाने की कुछ चीजें भी रखी जाती हैं और मरने वाले को याद करके फातिहा दी जाती। ज़ैनब कुबरा आज कूफे में भी पहुंची है तो ना खाने का कोई सामान है ना पानी का कोई कुआ। ज़ैनब अगर खाली पानी पर अपने भाई को याद करना चाहे तो ये भी मुमकिन नहीं है। क्यों? दो रिवायतें आपने सुनी है ना, वो बता रही हैं कि शाम गरीबा थोड़ा सा पानी आ तो गया लेकिन इसके बाद फिर ये प्यासे हैं। दो रिवायतें। पहली रिवायत यह है कि जब ये लुटा काफिला बाजार कूफा में दाखिल हुआ, आज ये काफिला बाजार कूफा में दाखिल हो रहा, जब ये लुटा काफिला बाजार कूफा में दाखिल हुआ तो एक मर्तबा चेहरों से ही लग रहा था ये इतने प्यासे चेहरे हैं, होठों से लग रहा था ये इतने सूखे होठ हैं कि अतराफ की छतों पर बैठी औरतों ने खजूर एक अहले बैत अथार की जानिब उछाली, क्योंकि इस्लाम में एक हुक्म यह है कि ज़कात की खजूरें मुसाफिरों को दी जाती हैं। ये भूखे मुसाफिर, ये प्यासे मुसाफिर, एक मर्तबा वो खजूरें फेंकी जा रही और ज़ैनब को कहना पड़ा हम अहले बैत रिसालत हैं, ज़कात हम पर हराम है। लेकिन कूफे की जालिम औरतों का ये ज़कात के खजूरे फेंकना बता रहा है कि चेहरे बता रहे हैं कि ये चंद घंटों के प्यासे नहीं हैं, आज ये चार दिन के प्यासे हैं। और सकीना का उम्मे हबीबा के मकान के सामने रुक के पानी मांगना ये बता रहा है ना कि ज़ैनब के पास इतना पानी नहीं है कि सकीना को दे सके। अल्लाह मालूम, खुदा मालूम ज़ैनब ने किस तरह भाई की फातिहा की होगी। पानी तक ज़ैनब को न मिला मगर बाजारे कूफा के हवाले से, आज बाजारे कूफा में है यह काफिला। तीन छोटे जुमले कहूं और आज की मजलिस तमाम हुई। पहला जुमला, बाजारे कूफा में यह काफिला पहुंचा और वो वक्त आ गया जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उमर साथ चाहता है कि जल्दी से ये काफिला इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचे, इनाम मिलेगा। और इब्ने जियाद कहता है कि काफिले को बाजार में रोक दो और बहुत देर से लेके आओ। क्यों? दो जुमले कहता है वो बेहया। नंबर एक, अभी हमारे दरबार की डेकोरेशन इनकम्प्लीट है, मोहम्मद की नवासियां बलवयाम में जलते सूरज के नीचे खड़ी रहे कोई बात नहीं है, मेरे दरबार की डेकोरेशन कंप्लीट होना चाहिए। और वो बेहया दूसरा जुमला क्या कह रहा, वो कहता है कि तुम अगर एक बार इनको लेके दरबार में आ गए, मेरे दिल को तशफ़ी नहीं होगी, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इतनी देर इन्हें बाजार में खड़ा रखो कि एक एक शख्स की, एक एक मर्द की निगाह मोहम्मद की नवासियों पे पड़े, अली और फातिमा की बेटियों पे पड़े। कूफे के सारे औबाश मोहम्मद की नवासियों को घेरे में लेके खड़े हो गए। ये मंजर हुसैन जैसा गैरतमंद बर्दाश्त न कर सका, जिसने अकबर के कलेजे में मर्ची बर्दाश्त कर ली, जिसने असगर के छिदे गले को बर्दाश्त कर लिया, जिसने अब्बास के कटे बाजू बर्दाश्त कर लिए, ये मंजर हुसैन से बर्दाश्त न हुआ। नोके नैजा पर कुरान की तिलावत शुरू की ताकि ये मंजर देखकर, ये नया मंजर है ना कुरान की तिलावत, सारा कूफा हुसैन के करीब आ जाए, ज़ैनब का पर्दा बच जाए, कुलसूम और सकीना इन नामहरमों की निगाहों से बच जाए। हुसैन ने तिलावत कुरान करके नामहरमों को अपनी तरफ बुलाया। हुसैन कहां? हुसैन का कटा सर, हुसैन का कटा सर नोके नैजा पे तिलावत कुरान कर रहा है, मगर नोके नैजा पे रुका हुआ तो है ना। एक गैरतमंद तो ऐसा है जिसका सर नोके नैजा पे रुका भी नहीं। रिवायत यह है कि जब 11 मुहर्रम की सुबह को, 11 ही के मसाए पढ़ रहा हूं, 11 की सुबह को जब यह काफिला उमर साद करबला से चला, उमर साद ने कहा सारे शहीदों के सर काटो, सारे शहीदों के सर काटो, शहीदों के सर काटे गए। कहा कि इन्हें नोके नैजा पे बुलंद करो। ये कटे सर नोके नैजा पे बुलंद हो रहे मगर एक सर ऐसा है जिसे जब भी नैजे पे लगाया गया वो एक मर्तबा जमीन पे गिर पड़ा। तीन बार कोशिश की गई, तीनों बार ये कटा सर जमीन करबला पे गिर पड़ा। उमर साथ को जल्दी है, मैंने बताया ना उसे जाना जल्दी है, चुनाचे उसने कहा खुली ये सर अगर नोके नैजा पे नहीं रुक रहा है तो अपने घोड़े की गर्दन में बांध ले। ये कटा सर खुली के घोड़े की गर्दन में बांधा गया और अब जो घोड़ा करबला से कूफा गया, कूफे से शाम गया, जब वो घोड़ा अपनी गर्दन झुका के दौड़ता था तो ये कटा सर सारे रास्ते जमीन से टकराते टकराते बाजार शाम में पहुंचा। बाद करबला किसी ने पूछा था मौला सज्जाद वो कटा हुआ सर किसका था, मौला ने सर झुकाया कहा वो मेरे चचा अबिल फजल अब्बास का कटा सर था। रावी ने हाथ जोड़े मौला तो अब्बास का सर नेजे की नोक पे रुका क्यों नहीं, अरे मेरा मजलूम आका आंखों में आंसू आ गए, कहा तूने मेरा कलेजा जख्मी कर दिया, तुझे क्या पता मेरा चचा कितना खैरतमंद था जिसने कभी घर के सहन में अपनी बहनों के खुले सर को ना देखा, वो नोके नेजा से बाजारों में ज़ैनब के खुले सर को कैसे देखता। वो सर जमीन पे गिर गया, वो हुसैन का सर था, ये अब्बास का सर है, एक तीसरा सर भी सुन लीजिए और आज की मजलिस खत्म। ये सब 11 मुहर्रम के वाकयात हैं। रियाज़ुल क़ुद्स आगा क़ुज़ुवैनी जिल्दे दोम बिल्कुल शुरू किताब में ये हदीस मौजूद है कि जब उमर साद ये कटे हुए सर हुक्म दे रहा है ना कि सर काटो। एक मसला हमारे उलमा में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता, वो आप भी गौर कीजिए उस पर, और वो ये है कि एक तरफ रिवायतों में है कि आका हुसैन ने अली असगर को एक टीले के पीछे ले जाके दफन कर दिया था 7 बार इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन और टीले के पीछे दफन किया था। लेकिन आज जब आप करबला मौला जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये जो आका हुसैन की जरी है इसमें आका हुसैन है, आका के पांती अली अकबर है और आका के पांती अली असगर भी हैं, या आका के सीने से लगा के असगर को सुलाया गया। तो असगर तो टीले के पीछे दफन थे, असगर इस जरी में कैसे आ गए, वो ये रिवायत है कि एक बार उमर साद ने कहा शहीदों के सर काटो, सर काटे जा रहे हैं, सर जमा किए गए, उमर साद ने कहा कि इसमें एक सर कम नजर आ रहा है, एक सर कम है, किसका सर, कहा कि असगर का नन्ना सा सर नजर नहीं आ रहा, हाय शशमाहे का नन्ना सा सर, वो तो वाकन दूर से देखने में नजर आ जाए, कहा कि असगर का सर नजर नहीं आ रहा, असगर का लाशा कहाँ है, अब तो लाशा भी नजर नहीं आया। फौजे यजीद तो उस वक्त मुंह फेर के रो रही थी जब असगर मारा गया ना। एक सिपाही ने कहा मैंने देखा था हुसैन टीले के पीछे असगर को लेके गए थे, थोड़ी देर के बाद खाली हाथ आए थे, ऐसा लग रहा है टीले के पीछे असगर को दफन करके आए। अब टीले के पीछे तो बड़ा सा मैदान है करबला सहरा, वहां कोई निशानी नहीं, कहां ढूंढा जाए, उमर साद को जाने की जल्दी है। लेकिन शिमर मलून कहता है कि आए मेरे सरदार मैं असगर को ढूंढ के लाता हूँ, घबराना नहीं। और कैसे ढूंढ के लाया, हाथ में एक नैजा लेके चला टीले के पीछे गया, हर थोड़ी देर के बाद इस नेजे को जमीन में गाड़ता है, नेजे को निकालता है, नेजे को पेवस करता है, नेजे को निकालता है। अब जो नेजा जमीन में गाड़ के निकाला तो नोके नेजा पर शशमाहे का नन्ना सा लाशा नजर आ रहा, गला एक सिरे से दूसरे सिरे तक छिदा है। शिमर ने असगर को उस नेजे से उतारा, एक हाथ में असगर को पकड़ा, दूसरे हाथ में कुर्ते से खंजर निकाला, असगर के गले में ये खंजर रखा, और उधर सकीना दूर से ये मंजर देख रही है, पुकार के कहती है पुपी अम्मा करबला का हर शहीद एक बार मारा गया, हाय मेरा असगर भैया तीरे हरमुला से भी मरा, शिवरे खंजर से भी शहीद हुआ। खुदा बंदा वो मसाहिब अली असगर जो अर्श इलाही को हिला देते, इन मसाइब अली असगर का वास्ता, इस नन्ही सकीना का वास्ता जो अपने भाई की शहादत का ये मंजर अपनी आंखों से देख रही है। दुनिया भर में जितने भी मुसीबत ज़दा परेशान हाल इल्तिमास से दुआ करने वाले हाजतमंद मोमिनीन और मोमिनात हैं, और जिन जिन ने मुझसे कहा है और जो मुझसे ना भी कह सके उन सब की हाजतों को पूरा फरमा। खुदावंदा अली असगर का वास्ता हर साहिब ईमान को औलाद के हर सदमे से महफूज फरमा, खास तौर पर जिन जिन मोमिनीन और मोमिनात के बच्चे किसी भी बीमारी में मुब्तला, चाहे वो हमारे बरादर मोहतरम अकील मर्चेंट साहब हो, चाहे वो अदनान करीम साहब हो, इन सबको इन तमाम बच्चों को शिफाए कामिला बेहक अली असगर अता फरमा। खुदावंदा बाजार कूफा में नन्नी सकीना की उस प्यास का वास्ता जिसमें उम्मे हबीबा से सवाल आप किया गया, तमाम दुनिया के साहिबान ईमान को रिस्क और रोजी की हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदावंदा और इन्हीं लाशों का वास्ता जिनके सर काटे जा रहे और जिनके सर नोके नैजा पे बुलंद किए کیے جا رہے ہمارے تمام مرحومین خصوصاً الاصل اسلامک سینٹر کے بانی غلام عباس پنجو صاحب اور برادر محترم حماد صاحب کی والدہ جن کا عاشور کی رات شام غریبہ انتقال ہوا, ان سب کو اعلی علین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما. خدا بندہ لیکن جس دین کی خاطر اصغر دو بار شہید ہو جائے, عباس کے بازو قلم ہو جائیں, قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں, ہمیں کم از کم اس دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خدا بندہ, اور ہماری یہ عزاداری بارگاہ فاطمہ میں قبول فرما, ہمیں مرتے دم تک بلکہ جنت میں بھی حسین کا عزادار بنا کے داخل فرما. الاصل اسلامک سینٹر میلبرن کو تا قیام قیامت اسی طرح سے اسی شان کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کے صفحہ ہزا بچھانے کی توفیق عطا فرما. اس کے منتظمین, اس کے والنٹیئرز, اس کے ریسائٹر اور اس میں کسی طرح کوئی خدمت انجام دینے والوں کو دعائے فاطمہ زہرا اور شفاعت علی ابن ابی طالب نصیب فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.